प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि इस पुस्तक का लेखक सुलेमान, जो एक राजा था, जो एक महान बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में उन सारे अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश की, अर्थात उसने प्रयोग के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश की कि सूर्य के नीचे अर्थात पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में किस प्रकार से मनुष्य अपने आप को संपन्न रख सकता है, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए सुलेमान ने बहुत से प्रयोग किए हैं, वैज्ञानिक प्रयोग और भौतिक प्रयोग, और यहाँ तक कि उसने भोग विलास के द्वारा भी शांति को प्राप्त करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया है कि भाग्यवाद, कुछ लोग हैं जो अपने आप को भाग्यवाद कहते हैं और भाग्य पर भरोसा रखते हैं। दार्शनिक लोग भी हैं जो दर्शन की बातें करते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि सुलेमान इस पुस्तक में बहुत सारे विचारों को हम तक पहुंचाता है और अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इन दिनों सबोपदेशक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि भाग्यवाद, कुछ लोग हैं जो भाग्यवाद पर विश्वास करते हैं, और सुलेमान भी कहता है कि जैसा होना है वैसा तो होना ही है। कई बार हम भी इस बात को दोहराते हैं कि उसके जीवन में ऐसी बातें होनी ही थी इसलिए हो गई। हम इस बात को नहीं सोचते हैं कि कई बार हम इस परिस्थिति को तैयार करते हैं। आज हम अध्याय 3 में और आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। अध्याय 3 में हम देखते हैं कि सुलेमान जीवन का दर्शन अपनाता है, जिसे हम कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यह विचार उस युग में अन्य जातियों में मान्य था। प्लेटो यूनानी दार्शनिक था जो इस विचार को रखता था। आज के युग में कुछ धार्मिक पंथ परमेश्वर के एक महान विश्वास प्रकट करते हैं, परंतु उनका विश्वास वास्तव में भाग्यवाद पर आधारित है। तो मित्रों, आइए अब हम और आगे बढ़ेंगे और अपने अध्ययन में सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय को खोल लेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। मेरे मित्रों, जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने नई चीजों की खोज की है। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया है उसने हमारे खोजने से पहले सब कुछ रख दिया है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए उन चीजों को प्राप्त करते हैं और आनंदित होते हैं, जबकि यह कोई नई बात नहीं है। मेरे मित्रों, यह हमारे जीवनचर्या में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिससे हम प्रतिदिन टकराते हैं, और इस बात को हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए इस संसार के लिए पहले से इसे नियुक्त किया हुआ है और इसमें हम और अन्य नई बातों को ढूंढना चाहते हैं। और इसी बात को हम देखते हैं कि सबोपदेशक का लेखक सुलेमान भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सुलेमान इससे अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको क्या बताना चाहता है। तो हम देखेंगे अब संसार में अन्याय, या दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि आत्म प्रेम। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। वह कहता है कि सब मनुष्य दुष्ट हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। यह बावलापन तो है, परंतु मैं कहूंगा कि मानव जाति का एक उचित दृष्टिकोण है। मैं एक सभा में प्रचार करने के लिए गया। वहां के निदेशक ने कहा, हम आप सबके साथ मसीही स्त्री एवं पुरुष का सा व्यवहार करेंगे। उसे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वे महिला और पुरुष का सा व्यवहार नहीं कर रहे थे। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि व्यापार जगत में हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं जब तक कि कोई हमारे विश्वास को तोड़ ना दे, परंतु उसने कहा कि वह सबको दुष्ट मानता है जब तक कि कोई यह सिद्ध न कर दे कि वह दुष्ट नहीं है। यह बावलापन तो है, परंतु दुर्भाग्य से यह सच है। और मेरा यह मित्र एक सफल व्यापारी भी है। वह उस सत्य को सामने रखता है जो रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में व्यक्त है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, सबने अर्थात हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है सब पापी हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। और तब सुलेमान अपनी विचारधारा में आगे कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं। ध्यान दीजिए कि यह प्रोत्साहन की बात नहीं है, क्योंकि वह कहता है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को देखे और जांचे, और यह भी कहता है कि मनुष्यों को जांच करके देखे कि वे पशु समान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको पशु नहीं बनाया है, उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है और उसने अपने श्वास हमारे अंदर डाले हैं ताकि हम उसके साथ संगति करें। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसा एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है, सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाक्यांश पर अनेक धार्मिक पंथ आधारित हैं। हमें स्मरण रखना है कि यह सूर्य के नीचे पृथ्वी पर वास कर रहे हैं और मनुष्य का ही विचार है जो पूर्ण रूप से स्वार्थी है। स्वार्थपरायण जीवन केवल अपने ही आनंद की खोज के कारण ही मनुष्य कुछ ऐसी परियोजनाओं में सहभागी होते हैं जो लाभदायक है। कुछ लोग खेल में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कुछ कला में, कुछ साहित्य में, कुछ संगीत में और ऐसे ही अनेक कार्यकलापों में। इनमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ये सब स्वार्थ संबंधित कर्म हैं। इनसे मनुष्य की स्वार्थ परायण लालसाओं की पूर्ति होती है। ऐसा दृष्टिकोण से आशावादी निष्कर्ष नहीं निकालता। मेरे प्रियो, क्रमिक विकास का विचार कहता है कि मनुष्य जानवर से मनुष्य बना है। आत्म प्रेम का विचार कहता है कि मनुष्य आज भी पशु है, जिसके कारण वह दूसरों से घृणा करता है। इस विचार के कारण ही जाति प्रथा का भी उदय हुआ है। यह विचार निस्सारता अर्थात व्यर्थ की ओर ले जाता है और दूसरों से स्वयं का अच्छा मानने की भावना उत्पन्न करता है। इसमें मृत्यु के प्रति निराशा का दृष्टिकोण होता है। मनुष्य किसी पशु की नाई ही मर जाता है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं आप मरकर समाप्त हो जाते हैं, जैसे एक कुत्ता मरता है वैसे ही आप भी मर करके समाप्त हो जाते हैं। अब क्योंकि उसके विचार में वह एक पशु के समान मर जाएगा तो वह जिएगा भी तो एक पशु की तरह ही, कि अपना ही और अपना ही सोचे और अपने लिए ही धन एकत्रित करे। आज इस शिक्षा का वृहद प्रचार है। यह वास्तव में क्रमिक विकास के सदृश ही है। अंतर केवल इतना है कि क्रमिक विकास के अनुसार मनुष्य पहले पशु था और इस विचार में मनुष्य आज भी पशु है। दोनों ही विचारों में मनुष्य में आत्मा नहीं होती है, अतः वह एक पशु के समान मरता है। अच्छा तो यही है कि पशु के समान जीवन भी जिए। मेरे प्रियो, इस विचार के आधार पर पशुओं का व्यवहार देखना अति रोचक होता है। मैं एक दिन बिल्ली के बच्चों को देख रहा था। मेरा विश्वास करें, उनमें एक दूसरे के लिए कोई मान सम्मान नहीं था। वे खेलते खेलते एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, एक खेलते अवस्थ थे, परंतु भोजन के लिए दुर्बल बिलौटे को धक्का देकर अलग करने में चूकते नहीं थे। वह भूख से मर भी जाता तो उनके लिए कोई भी भाई बहन नहीं होता। भाई बहन को उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। मालिक उसे अलग से खाना खिलाता था। क्या उनमें दया होती है? कभी नहीं। उनके जीवन का सिद्धांत ही यही है, स्वार्थ परायणता। चिड़ियों के बच्चों को भी आप देखिए, चिड़ियों के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वे अपना अपना स्वार्थ खोजते हैं। यह पशु जगत का सिद्धांत है। आज मनुष्य स्वार्थ परायण क्यों है? क्योंकि उसे स्कूलों में सिखाया जाता है कि वह पहले पशु था और आज वह सामाजिक पशु है। आप जंगल में देखिए, शेर भी जब भूखा होता है तो वह भी अपने बच्चे को खाने में नहीं हिचकता। और आज मनुष्य भी ऐसा ही जीवन जी रहा है। अपने भाई बहन माता पिता की उसे कोई चिंता नहीं है। संपत्ति के लिए वे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, नाश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मनुष्य पशु के समान जीवन जी रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 पद में सुलेमान कहता है, क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? सुलेमान स्वीकार करता है कि मनुष्य पशु से अलग है, क्योंकि मनुष्य का प्राण ऊपर जाता है जबकि पशु का प्राण नीचे जाता है। पशु पशु ही है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। सबोपदेशक 3:22 पद में हम पढ़ते हैं, अतः मैंने यह देखा है कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? दूसरे शब्दों में हमारे पास केवल एक ही जीवन है। यह भी आज की शिक्षा या जो आप उचित समझे कहें, हमें केवल अपनी परिस्थिति से समझौता करके पशु के समान जीवन जीना है। यही तो हिप्पी विचार था जो स्कूलों से उभरा था। मेरे मित्रों, आज इसी प्रकार का जीवन लोग जी रहे हैं, जिसे हम बर्बरता का जीवन भी कहते हैं। लोग एक दूसरे को नाश करने में पीछे नहीं हटते, किसी भी रीति से एक दूसरे के भोजन को छीनने, एक दूसरे की संपत्ति को छीनने, एक दूसरे को नीचा दिखाने में वे पीछे नहीं हटते हैं, और किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता करके जीवन जीने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि आज स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है, पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है। कई देशों में इसकी अनुमति भी राज्य सरकार की ओर से या वहां के कानून की ओर से दे दी गई है। क्या आप इसे पशु के समान जीवन नहीं कहेंगे? मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय में स्वार्थ प्रायणता में संतोष खोजने से उत्तम सुलेमान के विचार हैं। आइए आप मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। ध्यान दीजिए, यह राजनीतिक सिद्धांत का सा प्रतीत नहीं होता है। स्वार्थ परायण मनुष्य विरोध करता है, और सच तो यह है कि किसी का भी राज हो, गरीब मनुष्य का शोषण होता है। गरीबों का कल्याण नहीं है, वे शोषित वर्ग के लोग हैं। अतः विरोध अभियान यहां से आरंभ होता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें भी बराबरी का हक मिले, उन्हें भी अमीर होने का मौका दिया जाए, लेकिन मनुष्य उसका शोषण करता है, अर्थात उसे ऊंचा उठने नहीं देता है। यही कारण है कि हमारे देश में और अन्य देशों में भी आज लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अलग अलग संस्थाओं में होकर के मनुष्य उत्थान के नाम से, वर्ग उत्थान के नाम से संस्थाओं को चला रहे हैं। मेरे मित्रों, यह हमारे जीवन में एक प्रकार का प्रक्रिया है। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और यही कारण है कि लोग विरोध अभियान आरंभ करते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा। अब आप ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, या फिर मरने से अच्छा तो क्रांतिकारी होना है, जो पूर्व कथित का विपरीत है। दोनों ही विद्रोह की आत्माएं हैं। मृत्यु उसके लिए किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करती है। कई लोग किसी गलत काम के लिए भी मर जाते हैं, वे इस बात को नहीं देखते कि वे गलत कर रहे हैं या सही, इसलिए वे कहते हैं यदि मैं मर भी जाऊं तो अच्छा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं बनाया कि हम यूं ही मर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, उससे प्रेम करें और उस अद्भुत शांति को प्राप्त करें जिसे उसने मेरे और आपके लिए रखा है। जी हाँ, यदि हम उसे जानेंगे तो उससे प्रेम करेंगे, और जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसके निकटता में होंगे, और जब हम उसके निकटता में होंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे, और लोग मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा शांति को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको यूं ही मरने नहीं देता, और इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए मर जाना अच्छा है। यदि आप मसीह के लिए मरते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पौलुस भी कहता है कि मसीह में मरना मेरे लिए आनंद की बात है, मेरे लिए अच्छी बात है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 पद में सुलेमान आगे कहता है, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं, न ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि यह सिक्के का दूसरा पहलू है, जन्म न लेना भी अच्छा था। हम प्रायः सुनते हैं, मैं पैदा ही नहीं होता तो अच्छा रहता। यदि आप पैदा नहीं होते तो किस प्रकार से इस दुनिया को आप देखते? पैदा लेना और न लेना ये आपके बस में नहीं है, यह परमेश्वर की योजना में है, ताकि आप इस पृथ्वी पर जन्म ले और इस पृथ्वी पर रहते हुए उस महान परमेश्वर को जाने जिसने आपको बनाया है, और वह चाहता है कि आप उसके निकटता में रहें और उसके प्रेम और शांति और आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके निकटता में रहे और उस आनंद को प्राप्त करे जिसे वह मनुष्य को देना चाहता है। परंतु आज मनुष्य इस संसार में इस बात को भूल चुका है कि परमेश्वर है जो मनुष्य को शांति और आनंद दे सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुलेमान अपने जीवन में उन सारे अनुभवों के द्वारा से परमेश्वर की खोज न करते हुए पृथ्वी पर सूर्य के नीचे उन बातों को पाना चाहता है, और जब नहीं मिलता है तो जैसा लोग कहते हैं कि मैं पैदा ही नहीं होता तो अच्छा रहता। और हम इसे प्रायः बहुतों से सुनते हैं, कारण सिर्फ यही है कि वे परमेश्वर को नहीं पहचान पाए हैं। हम आगे पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 4:4 में, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। यह एक रोचक बात है कि स्वार्थपरायण व्यक्ति व्यवस्था के विरुद्ध, शोषणकर्ता के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध विद्रोह करता है, परंतु वह जो भलाई और सही काम करता है उसके बारे में क्या कहा जाए? वह जो कुछ करना चाहता है उसके बारे में क्या कहेंगे? सबोपदेशक का लेखक कहता है, व्यर्थ है, यह समय गंवाना है, यह वास्तव में जीवन के प्रति निराशा का दृष्टिकोण है। कई बार मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए दूसरों के साथ में ईर्ष्या या जलन क्यों रखता है, क्यों वह अपने जीवन में अपनी ही बातों में अपने ही कार्यों में सीमित होकर के उन आशीषों को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। आज मनुष्य एक दूसरे को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। यदि एक व्यापारी मेहनत करते हुए अच्छी सफलता को पा रहा है तो दूसरा व्यापारी उसे नीचा दिखाना चाहता है या किसी न किसी रूप में उसे फंसाना चाहता है। मेरे मित्रों, यह मनुष्य का स्वभाव है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस स्वभाव में अपने जीवन को जिएं, जो हमें निराशा उत्पन्न कराती है। सबोपदेशक की पुस्तक 4:5 में आगे हम पढ़ते हैं, मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। यह क्या ही दुखद बात हम देखते हैं। इसका अर्थ क्या यह है कि भूखा मनुष्य नरभक्षी है? जी नहीं, कहने का अर्थ है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करता है, वह अपने लिए परिश्रम नहीं करेगा। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे खाना चाहते हैं। बूढ़े माता पिता काम करते हैं और कई बार जवान अपने हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं और उनकी कमाई का आनंद लेते हैं, और कई बार माता पिता हैं कि अपने बच्चों की कमाई खाने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात पर विचार करना है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं या हम परिश्रम कर रहे हैं? आज परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको स्वस्थ रखा है तो निश्चय ही हम अपने जीविका के लिए परिश्रम करें, एक दूसरे से हाथ बटाएं, ना कि चुपचाप बैठे रहें और खाना खाते रहें। आज सबोपदेशक का लेखक सुलेमान भी इस बात को हमें बताता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। सबोपदेशक 4:6 में हम पढ़ते हैं, चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुढ़ना हो। यहाँ पर स्पष्ट कहूँ तो यह एक अति उत्तम विचार है। ऐसा मनुष्य अपना परिश्रम करता है और मैं कहूँगा कि यह कष्ट उठाने और कुढ़ने से अच्छा है। यदि आप काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। इसके सिवाय या इसके विपरीत कि आप बैठ करके किसी दूसरे को देखते हुए कुड़कुड़ाते रहें या कुड़ते रहें, अपने आप को हानि पहुंचाते रहें, जो आपको और भी अधिक निराश कर देती है। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद में आगे लिखा है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। आगे वह कहता है कि कुछ भी कर लें, कुछ भी लाभ नहीं, सब व्यर्थ है। यह सबसे बुरा निराशवाद है। इसमें संदेह नहीं कि स्वार्थ परायण विचार रखने वालों में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं। पुरानी चोट विनाश की ओर ले चलती है। इन सबका आधार आत्म प्रेम का सिद्धांत है, जिसके अनुसार सब कुछ शून्य हो जाता है, अर्थात सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है। सबोपदेशक 4 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ, यह भी व्यर्थ और नीरा दुख भरा काम है। मेरे प्रियो, यह भी एक विचित्र बात है कि आप किसी की भलाई भी करते हैं तो आप समय गंवा रहे हैं, और अंततः लेखक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
फिसले ना कभी कदम राहों में।